नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सच में आपको हिला कर रख देगी। डेविड ग्रेन की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द ओसेज मर्डर्स एंड द बर्थ ऑफ द एफबीआई।
हाँ, डेविड ग्रेन कमाल के लेखक हैं। द न्यूयॉर्कर के लिखते हैं और उनकी वो जो नैरेटिव नॉन फिक्शन वाली स्टाइल है,
बिल्कुल जैसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड में भी देखा था हमने, मतलब तथ्यों को कहानी की तरह पिरो देते हैं।
हाँ, वो पत्रकार वाली सटीकता भी है और एक उपन्यासकार वाला अंदाज भी, दोनों का गजब का मेल है उनमें।
और ये किताब किलर्स ऑफ द फ्लावर मून तो वाकई बहुत असरदार है। 2017 में आई थी ये, है ना?
हाँ, और आते ही छा गई, नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट रही, एडगर अवार्ड जीता। ये सिर्फ कोई ट्रू क्राइम कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो अमेरिकी इतिहास का एक बहुत ही अंधेरा पन्ना खोलती है। नस्लीय अन्याय की कहानी है और कैसे एफबीआई जैसी एजेंसी बनी, वो भी इसी से जुड़ा है।
और ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर मतलब भुला दिया जाता है, दबा दिया जाता है।
तो आज हम इसी किताब की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि ओसेज लोगों के साथ हुआ क्या था, वो कौन लोग थे जिनकी जिंदगियों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है।
हाँ, और वो कौन से मुद्दे हैं जो ग्रैन उठाते हैं, जो आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। सिर्फ कहानी नहीं सुनानी बल्कि समझना है कि इतिहास के इस कोने से हम क्या सीख सकते हैं।
बिल्कुल, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ओक्लाहोमा से, है ना? 1920s?
हाँ, ओक्लाहोमा का ओसेज काउंटी, 1920s का दशक। और यहाँ ओसेज नेशन की कहानी में किस्मत का एक बड़ा ही अजीब सा मोड़ आता है।
अजीब कैसे?
उन्हें उनकी अच्छी खासी जमीन से हटा दिया गया था पहले, और धकेल दिया एक ऐसी जगह पर जिसे सब पथरीला बेकार समझते थे।
अच्छा, मतलब एक तरह से निकाल दिया गया अपनी जगह से।
हाँ बिल्कुल, एक तरह का निर्वासन ही समझ लीजिए। लेकिन फिर उसी बेकार जमीन से तेल निकल आया।
अरे वाह, ये तो फिल्मी कहानी जैसा हो गया।
हाँ, और तेल भी थोड़ा बहुत नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े भंडारों में से एक।
तो फिर तो ओसेज लोग
रातों रात अमीर हो गए, मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे।
सोचिए जरा, महल जैसे घर, ड्राइवर वाली गाड़ियां,
बच्चों को पढ़ने के लिए यूरोप भेज रहे थे, सही मायनों में धन कुबेर बन गए थे वो लोग।
लेकिन कहानी का रुख यहीं से बदलता है ना? ये पैसा उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ।
बिल्कुल नहीं, ये दौलत ही उनके लिए मुसीबत बन गई। बाहर के लोगों की गिद्ध दृष्टि पड़ गई उनकी जमीन और पैसे पर।
कैसे लोग थे ये?
हर तरह के अवसरवादी, सीधे सीधे क्रिमिनल्स, और कुछ ऐसे भी जो कानूनी तौर पर उनके गार्डियन यानी संरक्षक बने थे।
गार्डियन मतलब देखभाल करने वाले।
हाँ, कागजों पर तो यही था। सिस्टम ऐसा था कि ओसेज लोगों को अक्सर वित्तीय मामलों में नासमझ मान लिया जाता था, तो उनके पैसे मैनेज करने के लिए श्वेत गार्डियन नियुक्त होते थे।
लेकिन नीयत ठीक नहीं थी इनकी।
अक्सर नहीं, कई गार्डियन तो खुद ही उनकी दौलत हड़पने में लगे थे, और जब कानूनी दांव पेच कम पड़े
तो फिर क्या? हिंसा?
हाँ, वो लालच फिर खूनी खेल में बदल गया, और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे ओसेज लोग कहते हैं आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर।
बाप रे, आतंक का शासन सुनने में ही भयानक लग रहा है।
और था भी भयानक। एक के बाद एक ओसेज लोग मारे जाने लगे, तरीके भी अलग अलग, कभी गोली मार दी, कभी जहर दे दिया।
जहर?
हाँ, धीमा जहर, पता भी न चले, और कभी कभी तो घर में बम विस्फोट करके उड़ा दिया।
ये सब हो रहा था और कोई कुछ कर नहीं रहा था? पुलिस, कानून?
यही तो सबसे डरावनी बात थी, लोकल अथॉरिटीज या तो मतलब निकम्मी साबित हो रही थी, या फिर इससे भी बुरा, वो खुद इस साजिश में शामिल थी।
शामिल थी मतलब पुलिस वाले भी?
हाँ, भ्रष्टाचार बहुत गहरा था, जड़ें बहुत अंदर तक थीं।
तो सवाल यही था कि आखिर ये सब कर कौन रहा था? ओसेज लोगों को उनके पैसे के लिए कौन मार रहा था?
और ऐसे माहौल में जहां इतना भेदभाव हो, इतना भ्रष्टाचार हो, क्या वहां न्याय मिल सकता था? ये बड़ा सवाल था।
इस पूरी कहानी के बीच में कुछ लोग हैं जिनकी कहानियां हमें इस त्रासदी को करीब से महसूस कराती हैं, जैसे मौली बरखाट।
हाँ, मौली बरखाट वो कहानी के केंद्र में है, पूरी तरह ओसेज है वो, और उनकी आंखों के सामने उनका परिवार तबाह होता है एक एक करके।
उनकी शादी तो एक श्वेत व्यक्ति से हुई थी, अर्नेस्ट बरखाट से।
हाँ, अर्नेस्ट बरखाट मौली में एक एक शांत सी ताकत है, अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने सबसे करीबी लोगों पर ही शक होने लगता है, और ये शक उन्हें अंदर से खाता रहता है।
क्या क्या हुआ उनके परिवार के साथ?
पहले उनकी बहन एना, उसकी लाश मिली, गोली मारी गई थी, फिर उनकी माँ लिजी, उनकी मौत हुई एक रहस्यमयी बीमारी से।
बीमारी? या
बाद में पता चला वो बीमारी नहीं थी, फिर उनकी दूसरी बहन रीटा और उसके पति बिल स्मिथ, उन दोनों को घर समेत बम से उड़ा दिया गया।
हे भगवान, और मॉली खुद भी बीमार पड़ रही थी, है ना?
हाँ, वो भी एक अजीब सी कमजोरी महसूस कर रही थी। बाद में मालूम हुआ कि उन्हें भी धीमा जहर दिया जा रहा था। सोचिए,
तो उनका सफर भरोसे से शुरू होकर एक भयानक धोखे तक जाता है।
बिल्कुल, ये समझना कि शायद उनका अपना पति अर्नेस्ट वो भी साजिश का हिस्सा है, ये कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए।
और दूसरी तरफ है विलियम के हिल, ओसेज हिल्स का राजा।
हाँ, किंग ऑफ द ओसेज हिल्स, ये है कहानी का मेन विलन। बाहर से देखो तो एकदम सम्मानित आदमी, बड़ा पशुपालक, सबका दोस्त, ओसेज का हमदर्द।
उनकी भाषा भी बोलता था, उनके साथ उठता बैठता था।
बिल्कुल, एकदम घुला मिला हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक मास्टरमाइंड था जिसका सिर्फ एक मकसद था, लालच।
क्या चाहिए था उसे?
ओसेज हेडराइट्स। ये हेडराइट्स क्या थे? कि ओसेज लोगों को उनकी जमीन से निकलने वाले तेल की रॉयल्टी में हिस्सा मिलता था, और यह हिस्सा खरीदा नहीं जा सकता था।
अच्छा, तो फिर
ये सिर्फ वारिसों को मिल सकता था, विरासत में।
हाँ।
तो हेल का प्लान क्या था? वारिसों को ही रास्ते से हटा दो।
बापरे, मतलब हत्या।
हाँ, उसने पूरा जाल बुना था, धोखे का, रिश्वत का, धमकी का, और आखिर में हत्याओं का। उसका किरदार दिखाता है कि कैसे भलाई का चोला पहनकर भी कोई कितना शैतान हो सकता है।
और फिर है अर्नेस्ट बर्कहार्ट, मॉली का पति, हेल का भतीजा। ये किरदार मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है।
हाँ, अर्नेस्ट कॉम्प्लेक्स है, दुखद भी। वो थोड़ा कमजोर इरादों वाला है। उसका चाचा हेल बहुत दबंग है, तो अर्नेस्ट आसानी से उसके असर में आ जाता है।
लेकिन अपनी पत्नी, बच्चों से प्यार भी करता था।
हाँ, ऐसा लगता है कि उसमें वो भावनाएं भी थी, लेकिन लालच, डर और अपने चाचा को खुश करने की चाहत, इस सब ने मिलकर उसे गुनाह की तरफ धकेल दिया।
और वो अपनी पत्नी के परिवार के खिलाफ साजिश में शामिल हो गया।
हाँ, एक्टिवली शामिल हुआ। बाद में जब जांचकर्ता टॉम व्हाइट उससे पूछताछ करते हैं, तब वो सब उहल देता है। उसका कबूलनामा केस का टर्निंग पॉइंट बनता है। अर्नेस्ट वो चेहरा है विश्वासघात का, जो घर के अंदर से होता है।
अब आते हैं जांच पर, ये भी अपने आप में कहानी है। और यहां आते हैं टॉम व्हाइट।
हाँ, टॉम व्हाइट कहानी के हीरो कह सकते हैं इन्हें। पहले टेक्सास रेंजर थे, फिर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आए, जो बाद में FBI बना।
कैसे इंसान थे वो?
शांत, ईमानदार, कम बोलने वाले। न्याय में उनका बहुत विश्वास था। वो एक तरह से पुराने जमाने के लॉमैन और नए जमाने की इन्वेस्टिगेशन के बीच के पुल जैसे थे।
और उनके बॉस थे जे एडगर हूवर।
बिल्कुल, हूवर तब युवा थे, बहुत महत्वाकांक्षी। उनके लिए ये ओसेज मर्डर केस एक बड़ा मौका था।
मौका किस चीज का?
अपनी नई एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की धाक जमाने का, ये दिखाने का कि वो मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों से ऐसे मुश्किल केस सुलझा सकते हैं। ये उनकी एजेंसी के भविष्य के लिए बहुत अहम था।
तो व्हाइट और उनकी टीम के लिए काम आसान नहीं रहा होगा ओसेज काउंटी में।
अरे बिल्कुल नहीं, माहौल बहुत खतरनाक था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, दुश्मनी थी, उन्हें बहुत छिपकर काम करना पड़ा,
अंडरकवर होकर।
हाँ, अंडरकवर एजेंट्स का इस्तेमाल किया। उनमें एक नेटिव अमेरिकन एजेंट भी था जो बहुत काम आया अंदर की खबर लाने में। व्हाइट का तरीका था, सब्र से काम लो, सबूत इकट्ठा करो, भरोसा जीतो।
किताब तीन हिस्सों में बटी है ना? ग्रैंड ने इसे क्रॉनिकल्स कहा है।
हाँ, तीन खंड है। पहला है द मार्क्ड वुमन। ये हमें मॉली बर्कहार्ट की नजरों से ओसेज दुनिया दिखाता है।
इसमें वो सारी हत्याएं आती हैं,
एना ब्राउन, लिजी, रीटा और बिल स्मिथ।
हाँ,
वो सब और लोकल अधिकारियों की लापरवाही, वो डर जो ओसेज लोगों में फैल रहा था, वो भ्रष्टाचार जो संरक्षकों से लेकर पुलिस तक फैला था, निजी जासूस जो भेजे गए वो भी या तो नाकाम रहे या मार दिए गए,
और मॉली की खुद की बीमारी और शक।
हाँ, ये पूरा खंड उस डर और अनिश्चितता के माहौल को बनाता है। पढ़ते हुए महसूस होता है कि जैसे हवा में ही खौफ घुला हुआ है।
फिर दूसरा खंड आता है द एविडेंस मैन। यहां फोकस बदलता है।
बिल्कुल, अब कहानी जांच की तरफ मुड़ती है। ओसेज ट्राइबल काउंसिल फेडरल सरकार से मदद मांगती है। हूवर टॉम व्हाइट को भेजते हैं
और व्हाइट की टीम सबूत जुटाना शुरू करती है।
हाँ, छिपकर। उन्हें पैटर्न नजर आता है, जहर देना, बीमा पॉलिसी, जाली वसीयत। फिर उन्हें एक ब्रेक मिलता है जब वो बम बनाने वाले आदमी तक पहुंच जाते हैं।
अच्छा, जिसने स्मिथ के घर पर बम रखा था।
हाँ, वो आदमी टूट जाता है और धीरे धीरे सारे तार विलियम हिल की तरफ इशारा करने लगते हैं।
और फिर आता है अर्नेस्ट बर्कहार्ट का कबूलनामा।
हाँ, वो क्लाइमैक्स है इस खंड का। टॉम व्हाइट की पूछताछ के बाद अर्नेस्ट सब मान लेता है, अपनी भूमिका भी और अपने चाचा हेल का नाम भी ले लेता है।
इसके बाद मुकदमे हुए होंगे।
हाँ, मुकदमे चले, बड़े नाटकीय, गवाहों को डराया गया, जूरी को खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि आखिर में हेल और उसके कुछ साथियों को सजा हो गई।
तो एफबीआई और हूवर के लिए ये बड़ी जीत थी?
बहुत बड़ी जीत। इसने एफबीआई की साख बना दी।
तो यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। विलन पकड़ा गया, न्याय मिल गया।
हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन ग्रीन यहाँ रुकते नहीं। तीसरा खंड, द रिपोर्टर, वो पाठक को एकदम चौंका देता है।
उसमें क्या है ऐसा?
उसमें डेविड ग्रीन खुद आते हैं। वो बताते हैं कि कैसे सालों बाद उन्होंने इस केस पर रिसर्च शुरू की। ओसेज काउंटी गए, आर्काइव्स खंगाले, पीड़ितों के परिवारों से मिले।
और उन्हें कुछ नया पता चला?
बहुत कुछ। उन्हें पता चला कि हेल और उसके साथियों की सजा वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा थी, टिप ऑफ द आइसबर्ग।
मतलब साजिश और बड़ी थी?
बहुत बड़ी। ग्रेन को सबूत मिले कि संदिग्ध हालात में मरने वाले ओसेज लोगों की गिनती शायद सैकड़ों में थी। एफबीआई ने तो सिर्फ 2 दर्जन के आसपास केस देखे थे।
सैकड़ों? ये कैसे हो सकता है? उन मौतों की जांच नहीं हुई?
नहीं हुई। उन्हें एक्सीडेंट, सुइसाइड या कारण अज्ञात बताकर बंद कर दिया गया। ग्रेन दिखाते हैं कि यह सिर्फ हेल का गिरोह नहीं था।
तो और कौन शामिल था?
कौन नहीं था? डॉक्टर्स थे जो जहर देते थे या झूठे डेथ सर्टिफिकेट बनाते थे, वकील थे जो जाली कागजात बनाते थे, बिजनेसमैन थे जो जमीनें हड़पते थे, लोकल पुलिस वाले थे जो आंखें बंद कर लेते थे, यहां तक कि पड़ोसी भी या तो लालच में शामिल थे या डर से चुप थे।
और वो गार्डियनशिप सिस्टम,
वो तो जैसे लूट का कानूनी तरीका बन गया था। ये तीसरा खंड किताब को एक सुलझे हुए मर्डर मिस्ट्री से उठाकर एक बहुत बड़ी भयानक ऐतिहासिक त्रासदी बना देता है। ये दिखाता है कि सच का कितना बड़ा हिस्सा दबा दिया गया था।
तो अगर हम मुख्य थीम्स की बात करें तो पहला तो यही है, सिस्टम में फैला हुआ लालच और भ्रष्टाचार।
हाँ बिल्कुल, ये कुछ बुरे लोगों का काम नहीं था, ये एक सड़े हुए सिस्टम का नतीजा था जिसने शोषण को मुमकिन बनाया।
दूसरा है विश्वासघात, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट।
हाँ, ये बहुत गहरा है। कातिल कोई बाहर वाला नहीं, अपना ही कोई था। पति, दोस्त, गार्डियन, हेल का पाखंड, अर्नेस्ट का धोखा, ये इंसान के अंधेरे पहलू को दिखाता है।
और इन सबके पीछे नस्लीय अन्याय तो था ही।
निश्चित रूप से ओसेज लोगों को कमतर समझा गया, इंसान नहीं सिर्फ पैसे का सोर्स माना गया। ये अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स के साथ जो सदियों से होता आया है उसी का एक भयानक उदाहरण है।
ग्रैंड इतिहास और याददाश्त पे भी सवाल उठाते हैं ना कि कैसे इस कहानी को भुला दिया गया।
हाँ, वो कहते हैं कि इसे जानबूझकर दबाया गया, मिटाया गया। उनकी किताब उस भूली हुई याद को वापस लाने का काम करती है। ये याद दिलाती है कि इतिहास कौन लिखता है, किसकी कहानी सुनी जाती है, ये बहुत मायने रखता है।
और जाहिर है ये एफबीआई के बनने की कहानी भी है।
हाँ, इस केस ने एफबीआई को मजबूर किया कि वो ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा साइंटिफिक तरीके अपनाए। टॉम व्हाइट उसी नई सोच के प्रतीक थे।
ग्रैन की लिखने की स्टाइल भी बहुत असरदार है, वो 3 हिस्सों वाली संरचना।
हाँ, बहुत चालाकी से इस्तेमाल की है। पहले पाठक को पीड़ित के साथ जोड़ो, फिर जांच का रोमांच दो, और फिर आखिर में सब कुछ उलट पुलट कर दो। दिखाओ कि सच तो और भी बड़ा और भयानक था।
उनकी भाषा भी बहुत सटीक है पर इमोशनल भी है, सनसनी नहीं फैलाते।
नहीं, तथ्य ही इतने चौंकाने वाले हैं कि उन्हें किसी सनसनी की जरूरत नहीं।
हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ अमीरी, महंगी गाड़ियां, महल, और दूसरी तरफ वो सुनसान जगह है जहां लाशें मिल रही हैं।
और किताब का टाइटल फ्लावर मून, कितना विडंबना भरा है। फूलों के खिलने का समय और वहां मौत का साया मंडरा रहा था।
कुछ पंक्तियां या भावनाएं जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे वो कहते हैं कि इतिहास को जानबूझकर दफनाया गया।
हाँ, या हेल के बारे में कि वो दोस्ती के नकाब में शिकारी था, ओसेज को इंसान नहीं रास्ते का रोड़ा समझता था।
और वो एहसास कि साजिश सिर्फ कुछ लोगों की नहीं थी, वो हर जगह फैली हुई थी, डॉक्टर के बैग में, बैंकर की किताब में, शेरिफ के बैज पर।
हाँ, ये सबसे ज्यादा डराता है कि बुराई कितनी आम हो सकती है।
इस किताब को पढ़कर मन भारी हो जाता है, गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। मौली की कहानी बहुत छू जाती है।
और वो विश्वासघात वाली बात कि अपने ही लोग ऐसा कर सकते हैं, ये परेशान करता है। ये अमेरिका के इतिहास की वो चमक धमक वाली तस्वीर नहीं है जो हम अक्सर देखते हैं।
हाँ, उसके पीछे का सच कुछ और ही है।
और किताब खत्म होने के बाद भी लगता है कि पूरा न्याय तो शायद कभी हुआ ही नहीं। कितने ही गुनाहगार बच निकले होंगे, कितनी ही कहानियां अनकही रह गई।
ये सवाल उठता है कि आज भी क्या ऐसा हो रहा है, किसकी कहानियां दबाई जा रही हैं।
बिल्कुल, ये किताब एक चेतावनी है कि लालच, नफरत और पावर मिलकर क्या कर सकते हैं, और अतीत के जख्म वो बने रहते हैं।
तो अंत में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कैसे सिस्टम का लालच और नस्लवाद मिलकर भयानक अन्याय पैदा कर सकते हैं, जहां पैसे के आगे जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह जाती।
और ये भी कि सच को दबाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। इतिहास की आवाजें, न्याय की पुकार, वो देर सवेर सुनाई दे ही जाती हैं, पर हमें कान खुले रखने होंगे। देखना होगा कि कहीं आज भी ऐसी कहानियां अनसुनी तो नहीं कह जा रही।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।